الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی کرنا، اس کے حکموں کی پابندی کرنا، نبی علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو اپنانا، یہ انسانی زندگی کا مقصد ہے. جو انسان اس مقصد کو اپنا لیتا ہے وہ انسان ہے، اور جو اس کو بھول جاتا ہے وہ پکا حیوان ہے. انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی پوری ہو، تو یہ عجیب سی ایک خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ جو میں چاہوں وہ پورا ہو. یہ شان فقط پروردگار کی ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ بندگی کرے اور اللہ تعالی کے حکموں کی پابندی کرے، یہاں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے لیے مصیبت خریدتا ہے، اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے. نیکی جب بھی کی جائے گی رحمت اترے گی، برکت اترے گی، سکون ملے گا. اب جب بھی گناہ کیا جائے گا نحوست اترے گی، ظلمت اترے گی، اور انسان کا دل بے سکون ہو جائے گا. نیکی کی تاثیر الگ ہے، گناہ کی تاثیر الگ ہے. اسی لیے نیک انسان سکون قلب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کو اسباب کے اعتبار سے پریشانیاں ہی کیوں نہ ملے. اور بدکار انسان بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کے پاس خواہشات پوری کرنے والے سب اسباب ہی کیوں نہ موجود. गुनाहों का असर भी दिल पे होता है और नेकी का असर भी दिल पे होता है। गुनाहों से दिल पे जुल्मत आती है और नेकी की वजह से दिल पे नूरानियत आती है। नेकी के अपने असरात हैं और गुनाहों के अपने असरात हैं। आप यूं समझिए कि नेकी इंसान के दिल को साफ करती है और गुनाह इंसान के दिल को मैला कर देता है। जैसे हदीस पाक में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह दाग लग जाता है, तौबा कर ले तो धुल जाता है, तौबा न करे फिर गुनाह करे तो दूसरा दाग लग जाता है। हत्ता कि गुनाह करते करते ये हालत होती है कि बंदे का दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। अब दुनिया में जो दिल की कैफियत होगी आखिरत में वही चेहरे की कैफियत होगी। अगर दिल ईमान के नूर से चमकता होगा तो कयामत के दिन इंसान का चेहरा मुनव्वर होगा, और अगर दिल पर दाग लगे होंगे, दिल मैला होगा, तो कयामत के दिन इंसान का चेहरा स्याह होगा। अब हमारे अपने इख्तियार में है कि हम अपने दिल को मुनव्वर करें या अपने दिल को स्याह करें। फिर जो असरात हैं ना, वो जाहिर में नजर तो नहीं आते, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला अपने मकबूल बंदों को उसके असरात महसूस करवा देते हैं, दिखा देते हैं। चुनाचे सीना उस्मान गनी लानो तशरीफ फरमा थे, एक शख्स आया, रास्ते में उसकी नजर गैर महरम पर पड़ गई थी, उसकी नजर ने खता की थी, तो उस्मान गिल्लानो ने उसको देखा तो फरमाया मा वाला कौम, लोगों को क्या हो गया कि ये हमारी महफिलों में बिला झिझक चले आते हैं हालांकि इनकी निगाहों से जिना टपकता है। तो ये कोई गैब का इल्म नहीं होता, ये एक जजमेंट होती है, ये एक फुरकान होता है जो अल्लाह ताला हर मुत्तकी परहेजगार को नसीब फरमा देते हैं। कि उसका कयाफा सच्चा होता है, उसके दिल में अल्लाह ताला सच्ची बात डाल देते हैं। एक मरतबा एक काजी था तो बड़ा परेशान बैठा था कि भाई ये लोग जो मुकदमे लेके आते हैं इनको तो हकीकत का पता होता है कि सच है या झूठ है, और मुझे तो नहीं पता। तो जिस बंदे को नहीं पता वो कैसे फैसला करे? तो उसके करीब एक आलिम थे, उन्होंने उसको तसल्ली दी और फरमाया कि देखो आप जब अपनी कुर्सी ये कज़ा पर बैठते हैं तो इखलास के साथ अपने काम को करने की नीयत लेकर बैठते हैं, तो आपके दिल के इखलास की वजह से अल्लाह ताला आपके दिल में सच बात डाल देते हैं, जबकि फरीकैन के दिलों के अंदर बुग्ध हसद और दुश्मनी होती है, हकीकत जानने के बावजूद उनकी आंखों पे पर्दे पड़े होते हैं। तो जब इंसान तकवा परहेजगारी की जिंदगी गुजारता है तो फिर उसको अल्लाह ताला ये नूर दे देते हैं, इसको फरासत मोमिनाना कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे 10 बंदे चले जा रहे हो और कोई पुलिस का अफसर उनको देखे तो वो देखते ही गेस कर लेगा कि फलां लड़के के चाल ढाल अच्छी नहीं है। उसको मुजरिम लोगों के साथ रहते रहते इतना मलका हो जाता है, इतनी मशक हो जाती है कि वो बंदे की चाल से ही अंदाजा लगा लेते हैं उसके किरदार का। तो ये फरासत मोमिनाना अल्लाह ताला हर एक को अता करते हैं। फरमाया गया इत्तकु फरासत अल्मुमिन फइन्नहु यंदुरु बिनूर। मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। चुनाचे एक बुजुर्ग बगदाद की मस्जिद में बैठे हुए थे, जब वो मस्जिद से बाहर की तरफ आने लगे उन्होंने खूबसूरत नौजवान को देखा जिसने बहुत ही अच्छा अतर लगाया हुआ था और बहुत हंसता मुस्कुराता उसका चेहरा था, बहुत ही खूबसूरत था और जिब्बे अमामे में मलबूस था। तो वो बुजुर्ग उसके करीब से गुजरते हुए फरमान लगे कि इस शख्स से मुझे कुफर की बू आती है, इस शख्स से मुझे कुफर की बू आती है। अब सुनने वालों ने इसको जरा अजीब अंदाज से सुना कि भाई इस शख्स जाहिर को देखो कि ये बिल्कुल सूरत मोमिनाना बनाई हुई है, और ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसके पास से गुजरा हूं तो मुझे कुफर की बू आती है। उस नौजवान ने भी उन बुजुर्गों को ये बात करते सुन लिया तो उसने लोगों से पूछा कि ये जाते हुए क्या कह के गए। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई आपके बारे में ये कह के गए। तो उस नौजवान को पसीना आ गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहने लगे मुझे उनके पास ले चलो, मैं कोई बात करना चाहता हूं। तो जब उनके पास लाए तो कहने लगा जी मुझे आप कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ली। कभी तेरा हाल क्या है, मसला क्या? तो कहने लगा कि मसला ये था कि मैंने ये किताब में पढ़ा कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो मैंने दिल में सोचा कि मैं जाकर आजमाता हूं कि इनके पास फरासत मोमिनाना है भी या नहीं, है भी या नहीं। मैं यहूदी हूं, मैंने मुसलमानों जैसे कपड़े पहने, मुअत्तर किया अपने जिस्म को, और मैं आया कि देखें मुझे इनमें से कोई पहचानता भी आया नहीं। तो इस बुजुर्ग ने पहली नजर पड़ने पर ही मुझे पहचान लिया कि मेरे पास एक कुफर की बू आती। ये बू क्यों आती है? इसलिए कि गुनाह के अंदर ये तासीर होती है। देखें एक बात जरा समझने की कोशिश करें कि बात चीजें ऐसी होती हैं जिनमें खराब होने वाले जरासीम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पुलाव पकाएं, गरम गरम को ढक के रख दें तो 6-8 घंटे के बाद जब खोलेंगे ना तो बू होगी और वो खाने के काबिल नहीं होंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह कि उस चीज के अंदर ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जिसने उसको खराब कर दिया, फर्मेंटेशन हो गई, बू आने लगी। इसके बिलमुकाबिल आप गुड़ को रख लें, एक महीने बाद निकालेंगे, 2 महीने बाद निकालेंगे, 1 साल बाद भी निकालेंगे, जैसे रखेंगे वैसे पाएंगे। उसकी क्या वजह है कि इस गुड़ के अंदर वो बैक्टीरिया है ही नहीं जो इसको फर्मेंट करे, खराब करे। آپ شہد رکھ دیں، کئی مہینوں کے بعد آپ جب اسے کھولیں گے تو وہ شہد شہد ہوگا، خراب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہے ہی نہیں جو اسے خراب کرے. جبکہ باقی کئی چیزیں ایسے کھانے پینے کی ہوتی ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان جو نیک اعمال کرتا رہے اس کے اوپر نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، اور اگر وہ علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہی ختم ہو جاتا ہے جو اس بندے کو گلاتا ہے، اس کے جسم کو جو مرنے کے بعد گلاتا سڑاتا ہے وہ بیکٹیریا ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے عجیب بات یہ ہے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے رخصت ہوتے تو ان کے اجسام کو زمین نہیں کھایا سکتی تھی، ان کے جسم مبارک زمین کے اندر محفوظ ہوتے تھے. پاکیزہ جسم تھے، ان کے اندر وہ بیکٹیریا تھا ہی نہیں جو ان کے جسم کو گلائے. جبکہ ایک عام آدمی مرتا ہے تو چند دن میں اس کی لاش گل سڑ جاتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر وہ بیکٹیریا ہوتا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوتی ہیں. ایسے کاملین اولیاء جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر چکے ہوتے ہیں اور گناہوں سے کبائر سے بچ اور اجتناب کر چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ فرماتا ہے. ہم لوگ اس وقت پرائمری اسکول میں پڑھا کرتے تھے، جب ایک سیلاب آیا تھا تو ہمارے شہر کے قبرستان میں کچھ قبور ایسی تھیں جو بیٹھ گئی تھی، کھل گئی تھی، تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ایک آدمی مدفون ہے اور اس کا جسم بھی سلامت، اس کا کفن بھی سلامت. ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ڈر لگتا تھا، خود قبرستان جاتے ہوئے قبرستان کے نام سے ڈر لگتا تھا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو خود جاتے ہوئے دیکھا جو وہاں جاتے تھے، اور دیکھ کے اس قبر میں اس آدمی کو آتے تھے، اور ہم نے کتنے لوگوں کو اس منظر دیکھنے کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا. پتہ نہیں وہ کب فوت ہوا ہوگا، پرانا قبرستان تھا، سالوں گزر گئے، آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی. ہمارے ایک تعلق والے تھے، انہوں نے اپنا ایک چشمدید واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں پنجاب یونیورسٹی کے جو نہر ہے اس کے اوپر صبح کی سیر کے لیے جایا کرتا تھا. ایک مرتبہ طوفان آیا، بارش ہوئی، اور ایک بڑ کا درخت تھا تو وہ اکھڑ کے نیچے گرا. تو کہنے لگے کہ میں جب اس کے قریب گزر رہا تھا تو اس کا گڑھا جو بن گیا تھا میں نے اس میں جھانک کے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک آدمی ہے جس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کے گرد اس درخت کی جڑوں نے ایسے جنگلہ بنایا ہوا ہے جیسے کہ لوہے کی تار سے کوئی جنگلہ بنا دیتے، اور اس کے اندر وہ آدمی، اس کی لاش حرام پہ پڑی ہوئی ہے. بنیادی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ یہ کہ یہ وہ کاملین ہوتے ہیں جو کبائر سے سچی توبہ کر کے اپنے اندر گناہ کے اس بیکٹیریا کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں. جب تک یہ بیکٹیریا ہوگا یہ انسان کے جسم کو گلائے گا. چنانچہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی لوگ فوت ہوتے ہیں तो दफन से पहले ही उनके जिस्म से बू आनी शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो फौत होते हैं और उनके जिस्मों से खुशबू आती है। आपने सुना होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जब दफन किया गया तो उनकी कब्र से खुशबू आती थी। लोग इससे बड़ा हैरान होते हैं। अजीब बात है कि हमें तो कोई हैरानी नहीं होती, इसलिए कि वो अपने तकवा की वजह से एक फूल की मानिंद बन गए थे, और जब फूल को सोहबत उस मट्टी को नसीब हुई तो जिस तरह फूल से खुशबू आती है उस मट्टी से भी खुशबू आने लग गए। जमाले हम नशी दर मन असर कर मगर न मन हुआ खाकम के हस्ता। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी इसी किस्म का वाक्य है कि उनके जिस्म से, उनकी कब्र से उनके दफन करने के कई दिन बाद तक खुशबू आती रही। हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के एक खादिम थे, उन्होंने उनके वफात के बाद ख्वाब में देखा हजरत की ज्यारत हुई, पूछा कि हजरत आगे क्या बना, तो फरमाया कि अल्लाह ताला के हुजूर पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहमद अली तू इतना क्यों रोता था। उनकी तबीयत बड़ी रोने वाली थी, कसीरुल बुका थे, हर वक्त आंखों में आंसू, खशियत तारी रहती थी, खौफ तारी रहता था, रोते रहते थे। तो फरमाने लगे कि मेरी इस आदत की वजह से परवरदिगार ने मुझसे पूछा अहमद अली तो क्यों रोता था, तो फरमाते हैं मैं तो और भी डर गया, इसलिए कि मैंने पढ़ा था मन्नू की शकिल हिसाब वकदूज जिबा, जिसको हिसाब किताब में पूछ गुच्छ शुरू हो गई उसको अजाब मिल कर रहेगा। तो कहने लगे मैं और घबरा गया। तो जब मैं और घबरा गया तो मुझे फरमाया अहमद अली तू आज भी डर रहा है, आज तो तेरे इनाम का दिन है, हमने तेरे भी सब गुनाहों को माफ कर दिया, और जिस कब्रिस्तान में तुझे दफन किया गया उस कब्रिस्तान के भी हर गुनाहगार मैयत को हमने माफ फरमा दिया। जिस कब्रिस्तान में दफन किया उसके हर गुनाहगार मुर्दे को भी हमने माफ फरमा दिया। ये कैसे हुआ भाई कि उन्होंने कबायर से अपने आप को बचा लिया था, और इस्तिग़फ़ार जो करते रहते थे तो अल्लाह ताला सगायर को माफ फरमा देते। अब देखें कि नजासत जो है ना शरीयत की नजर में वो दो तरह की है, एक को नजासत हकीकी कहते हैं और एक को नजासत हुक्मी कहते हैं। नजासत हकीकी तो हुई पेशाब पखाना और इस किस्म की गंदगियां जो होती हैं, इनको नजासत हकीकी कहते हैं। और नजासत हुक्मी कहते हैं कि जो हुक्म की वजह से नजस चीज कहलाए। वो नजासत हुक्मी कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी जिंद भी है, उस पर गुसल फर्ज हो चुका, तो अगर वो अपने जिस्म पे लगी नजासत को धो भी ले तो भी जब तक वो गुसल नहीं करेगा तब तक नापाक कहलाएगा। न मस्जिद में दाखिल हो सकता है, न कुरान पाक को हाथ लगा सकता है, न इस हालत में कुरान पाक की तिलावत कर सकता है, इसलिए कि वो नजस है। देखने में तो नजासत उसके जिस्म पे नजर नहीं आती, उसने तो अपने जिस्म से नजासत को धो लिया, लेकिन ये नजासत हुक्मी कहलाती है। हुक्मन वो बंदा नजस है, ناپاک ہے. اسی طرح جو آدمی شرک کا ارتکاب کرے گو اس نے 70 دفعہ غسل کیا ہو اور خوشبوئیں لگائی ہوئی ہوں لیکن شریعت کی نظر میں وہ پکا نجس ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا انما المشرکون نجس, کہ مشرک لوگ تو نجس ہوتے ہیں. سمندر کے پانی سے بھی وہ شخص غسل کرے تو اس کی نجاست دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک سے توبہ نہ کرے. تو یہ نجاست حکمی کہلاتی ہے, ایک نجاست حقیقی کہلاتی ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے جس عضو سے گناہ کرتا ہے اس کا وہ عضو ناپاک ہو جاتا ہے. آنکھ نے خطا کی, آنکھیں ناپاک ہو گئیں. زبان سے جھوٹ بولا, زبان ناپاک ہو گئی. اور واقعی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسے بدبو نکلتی ہے کہ جو اس کے فرشتے پاس ہوتے ہیں وہ بھی دور چلے جاتے ہیں اور ان کو ناگواری ہوتی ہے. اب غور کیجئے کہ ہم جھوٹ بولیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ والوں کو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے نکلی بدبو کا فوراً پتہ چل جاتا ہے. بدبو کا پتہ چل جاتا ہے ان کو. اسی لیے نیکی کرتے کرتے انسان کے جسم میں اچھی مہک آ جاتی ہے اور گناہ کرتے کرتے انسان کے جسم سے بدبو آ جاتی ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام کا جو پسینہ مبارک تھا اس میں اتنی خوشبو تھی, اتنی خوشبو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی خوشبو سونگی نہیں تھی. پھول کھل کھل کے کہتے ہیں صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں, وہ اب بچوں کو بھیجتی تھی اور نبی علیہ السلام کے جو پسینے کے قطرے تھے ان کو ایک چھوٹی شیشی کے اندر جمع کرواتی تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ام سلیم کیا کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم اس پسینے مبارک کو جس عطر میں ملا دیتی ہیں اس عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس عطر کی خوشبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور حضرت انس لانو روایت کرتے ہیں کہ ما شممت مسکم ولا انبر ازم, اللہ کی قسم نہ میں نے مشک کو سونگا نہ میں نے انبر کو سونگا مگر جو خوشبو نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے میں تھی وہ نہ مشک میں تھی نہ انبر میں تھی. اور یہی چیز صدیق غلاموں کے بارے میں تھی. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک, کہ ابو بکر صدیق لانو کے پسینے کی جو مہک تھی وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی تھی. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ بدن کی بدبو ہوتے ہیں اور نیک اعمال یا نیکیاں بدن کی خوشبو ہوتی ہیں. نیک اعمال سے بدن پاک ہوتا ہے اور گناہوں سے بدن ناپاک ہوتا ہے. یہ ناپاکی اگر ہم اپنے دل میں لے کے آگے چلے گئے تو اس ناپاکی کے اثرات ہمارے بدن کو فرمنٹ کر کے رکھ دیں گے, گلا سڑا کے رکھ دیں گے. ये कीड़े पैदा कर देंगे जिस्म के अंदर, और चंद दिन में इंसान के गोश्त को कीड़े खा जाएंगे। 1985 की बात है, मैंने एक मरतबा अमेरिका में बयान किया मौत के उन्वान पर, तो उसमें मैंने बताया कि भाई उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, एक जगह रोने बैठ गए कब्रिस्तान में। लोगों ने पूछा कि आप तो इस जनाजे के वली थे, आप क्यों पीछे खड़े हो गए? तो फरमाने लगे कि मैं गुजर रहा था तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे कब्र से आवाज आ रही है। यानी कई मतलब इंसान की कैफियत ऐसी बनती है ना, आम लोग इसको इल्यूजन समझ लें और हम इसे कष्ट कह लेते हैं। तो कब्र ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज तुम मुझसे ये क्यों नहीं पूछते कि जो मेरे अंदर आता है तो उसका मैं हशर क्या करती हूं? तो फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया और मैंने यही पूछा कि बता मुझे तू अपने अंदर आने वाले के साथ क्या सलूक करती है। तो आवाज आई कि जो मेरे अंदर आता है मैं उसकी बदन के अंदर कीड़े डाल देती हूं, गोश्त को खा लेती हूं, हड्डियों को जुदा कर देती हूं। तो ये वाकया एक मर्तबा मैंने नकल किया। जो सुनने वाले लोग थे ना, उनमें से काफी पीएचडी डॉक्टर और एमबीबीएस डॉक्टर फलां फलां थे। उनमें से एक डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगे जी कि आपने ये वाकया कहां पढ़ा? मैंने उनको बताया कि ये वाकया इस तरह पढ़ा मैंने फलां किताब में। वो कहने लगे जी आप ये मंजर आंखों से देखना चाहेंगे? मैंने कहा भाई इबरत की नजर से मैं देखूंगा। कहने लगे जी आप 2 घंटे फारिग करें। वो सिलसिले में बैठ थे, अच्छे बंदे थे, अपने बंदे थे। अगले दिन 2 घंटे मैंने फारिग किए तो वो मुझे लेकर चले गए। एक म्यूजियम था जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। उसमें एक ममीज का सेक्शन बना हुआ था, शीशे के कमरे बनाए हुए थे और रोशनी ऐसे की हुई थी जैसे असर का वक्त होता है। बहुत खामोशी थी उस सेक्शन में, बड़ी अजीब सी वहशत थी उस सेक्शन में। जब हम पहले कमरे के पास गए जो बना हुआ था शीशे का, तो उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था कि एक आदमी मरा, और जैसे मरा था हमने उसकी बॉडी को केमिकल लगाकर महफूज करके रख दिया रिकॉर्ड के लिए। अंदर हमने देखा कि एक अंग्रेज मरा हुआ था और उसके जिस्म पर केमिकल छिड़क कर उन्होंने उसको प्रिजर्व कर दिया था। इसको हिनूत शुदा लाश कहते हैं, मम्मी कहते हैं। उससे अगले में पहुंचे, लिखा हुआ था कि यह बंदा मरा और इसको इतना अरसा कब्र में रखने के बाद हमने निकाला और जैसे इसको पाया उसी तरह हमने केमिकल छिड़क कर इसको नमूने के लिए रख दिया। तो अंदर जाकर हमने देखा तो हमारी हैरत की इंतहा न रही कि इंसान के बदन में कब्र में जाकर जो सबसे पहली तब्दीली आती है वो ये कि आंखों के ढेले लटक कर उसके रुखसारों पे आ जाते हैं। तो ये आंख का डेला ये भी रुखसार पर आया पड़ा और ये भी रुखसार पर आया पड़ा। वो निगाहें जो अल्लाह ताला ने अपने घर को देखने के लिए दी थी, जो अल्लाह ताला ने अपने कुरान को देखने के लिए दी थी और या अल्लाह के चेहरों को देखने के लिए दी थी, जब इन निगाहों से हम गैर की तरफ देखेंगे तमा की नजर से, लालच की नजर से, तो फिर अल्लाह ताला कब्र में सबसे पहले इन आंखों को कीड़ों की ग़िज़ा बनाते हैं। चुनाचे हमने देखा कि उसके डेले जो थे वो रुखसार पर आए हुए थे और जैसे चावल किसी चीज के साथ चिपके हुए होते हैं, ऐसे कीड़े उन आंखों के साथ चिपके हुए थे, उसे खा रहे थे। आगे जाके देखा तो लिखा हुआ था कि भाई इस बंदे को हमने इतना अरसा कब्र में रखा और फिर निकाला। उसमें एक तो इसी तरह आंखों के डेलों को कीड़ों ने खा लिया था, आंखों में कीड़े पड़ गए थे। दूसरी तब्दीली हमने ये देखी कि उस बंदे के होंठों को भी कीड़ों ने खा लिया था और उसके दांत ऐसे नजर आ रहे थे जैसे मुर्दा बकरी के दांत निकले हुए थे। होंठ जो थे वो कीड़ों ने खा लिए और 32 दांत की 32 ही नजर आ रही थी। जिस जुबान से इंसान झूठ बोलता है, गीबत करता है, दूसरों पे बोहतान लगाता है, अल्लाह ताला इस मुंह को भी फिर कीड़ों से भर देंगे। और उसके पूरे मुंह में कीड़े पड़े हुए थे। फिर अगले को देखा तो लिखा हुआ था इसको इतना इतना अरसा हमने रखा, निकाला तो जिस हाल में हमने पाया उसी हाल में प्रिजर्व कर दिया। उसमें तीसरी तब्दीली हमने देखी कि उस बंदे के पेट के अंदर भी कीड़े पड़ गए थे और जैसे प्याले में चावल भरे होते हैं, उसके पेट के प्याले में कीड़ों के चावल भर गए थे। बस उसके आगे फिर ये कीड़े बढ़ते गए, हत्ता के आखिरी जो कमरा था उसमें हमने जाकर देखा कि इंसान की फकत हड्डियों का ढांचा, और वो भी उंगलियां पोरों से जुदा, पोरे हथेलियों से जुदा, हथेलिये बाजुओं से जुदा, बाजू कोहनियों से जुदा और कोहने जिस्म से जुदा, पूरे जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से जुदा जुदा पड़ी। उनको देखकर इतना दिल पर गम तारी हुआ, इंसान तो क्या बोल बोलता है, क्या बना फिरता है दुनिया में। सोच तो सही कि तू अपने आप को पाल रहा है और तेरी नाफरमानियों की वजह से तू इसे कीड़ों की गिजा बना रहा है। अगर ये इंसान गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले और इसके अंदर से ये गुनाहों का फसाद खत्म हो जाए तो आप यूं समझें कि इसको जब भी रखेंगे इसके जिस्म को कोई चीज गला नहीं सकेगी, इसलिए कि वो गुनाहों के बैक्टीरिया इसके अंदर है ही नहीं। अब हम फैसला करें अपनी जिंदगी में कि हम अपने आप को कीड़ों के लिए पाल रहे हैं या अल्लाह ताला के हुजूर पेश करने के लिए पाल रहे हैं। जो गोश्त हराम गिजा से बनेगा वो कीड़ों की गिजा बनेगा। तो गुनाहों के असरात होते हैं इंसान के ऊपर। तो इसलिए जो शख्स गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है वो बातिन की नापाकी को साफ कर लेता है। और जितना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, इसको धोखा दिया, उसको बेवकूफ बनाया, इसको ये किया, हकीकत में वो अपनी आकबत बर्बाद कर रहा होता है, अपने आप को जहन्नम की गिजा बना रहा है। हर होने वाला गुनाह इंसान के जिस्म में नापाकी की मानिंद है। तो हर गुनाह से सच्ची तौबा करके इंसान अपने आप को गुनाहों से पाक साफ कर ले। अब इंसान फरिश्ता तो नहीं बन सकता, लेकिन यह तो जरूर है ना कि अल्लाह ताला के हुजूर बैठकर सच्ची तौबा करे اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اگر بالفرض سرزد ہو جائے تو پھر دوبارہ پھر توبہ کر لے. اب یہ معاملہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دنیا کے اندر رکھتے ہیں. اگر یہ گناہوں کا بیکٹیریا اندر رہا تو یہ لاش قبر میں جاتے جاتے گل جائے گی, کیڑے اسے کھائیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمی کو جب پھینکا جائے گا نا تو جو زانی ہوگا اس کے جسم سے ایسی بدبودار ہوا نکلے گی کہ جہنمی اس بندے کی اس بدبودار ہوا سے تنگ ہوں گے اور اس کو بری نظر سے دیکھیں گے. تو دیکھو گناہوں کی بدبو یہ دنیا میں بھی اور جا کے آخرت میں بھی محسوس ہوگی. تو حکم خدا ہے, جب ٹوٹتا ہے تو انسان کو اپنا اثر دکھا دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شامل کروا لیں. دل سے اس بات کا عہد کریں کہ اے مولا ہم آج کے بعد اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہیں کریں گے. جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ خوشبو ہوتی ہے جسم میں نیکی کی, چنانچہ کتنے واقعات ایسے ہیں. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ کے زمانے میں ایک طالب علم تھا, اس کے سامنے کسی عورت نے برے ارادے کا اظہار کیا. اس نوجوان نے اس عورت کے چنگل سے بچنے کے لیے اسے کہا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے. وہ بیت الخلاء میں گیا اور اپنے جسم پر اسے نجاست مل لی. جب باہر نکلا تو جسم سے بدبو, اس عورت کو اتنی نفرت ہوئی اس نے اس کو وہاں اپنے گھر سے بھگا دیا. اس نے اپنا ایمان بچا لیا. اب اس کو فکر تھی کہ لوگ اس بدبو کو سونگیں گے تو مجھے کیا کہیں گے. تو یہ نوجوان جلدی سے مدرسے میں آیا, غسل خانے میں گیا, اپنے جسم سے نجاست کو بھی دھویا, کپڑے بھی دھوئے اور اسی طرح گیلے پہن لیے. پھر یہ حدیث پاک کی کلاس میں آ کر بیٹھا تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے. جیسے ہی آ کر بیٹھا تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آج اتنی تیز خوشبو لگا کر کون آیا ہے. جب دو چار دفعہ پوچھا تو طلباء نے اس کی طرف اشارہ کیا, جی کہ یہ لگا کے آیا. تو حضرت نے اس کو بلا کے پوچھا بھئی اتنی تیز خوشبو لگا کے کیوں آئے گا جماعت میں. تو تب اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے تو اپنے جسم پر نجاست لگائی تھی اس کو جو ہے گناہ میں پڑنے سے بچانے کے لیے, لیکن اب میں جب نہا دھو کے نکلا ہوں تو جہاں جہاں نجاست میں نے لگائی تھی میرے جسم کے انہوں حصوں سے خوشبو آ رہی ہے. چنانچہ یہ نوجوان جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک جیسی خوشبو آتی تھی. اس کو خواجہ مشکی کہتے تھے, ان کا نام لوگوں نے خواجہ مشکی رکھ دیا تھا کہ ان کے جسم سے مشکی خوشبو آتی تھی. امام عاصم رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کے بڑے قراء میں سے گزرے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے اور سارا دن لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے. ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی. ایک مرتبہ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت آپ منہ میں کیا رکھتے ہیں.
कि जिसकी वजह से इतनी खुशबू आती है। तो उन्होंने फरमाया भी मैं तो कुछ नहीं मुंह में रखता, यानी कोई इलायची या कोई और ऐसी चीज खुशबूदार मैं तो नहीं रखता। उसने कहा हजरत लेकिन खुशबू इतनी आती है। तो इस पर इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देखो एक मरतबा मैंने ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाने लगे कि आसिम तुम सारा दिन इस मेरी मस्जिद में बैठ के कुरान पाक की खिदमत करते हो, ये कहकर अल्लाह ताला के महबूब ने मेरे होंठों को बोसा दिया ख्वाब में, तो मेरी आंख खुली, उस बोसे की ये बरकत है कि अब मेरे मुंह से उस वक्त से खुशबू आ रही है। चुनाचे इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा रहे उनके मुंह से खुशबू आती है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि हम जो भी गुनाह करते हैं हम अपने अंदर फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया को दाखिल कर लेते हैं। आंखों के रास्ते से दाखिल करें, जबान के रास्ते से दाखिल करें, दिल दिमाग के रास्ते से दाखिल करें, ये बैक्टीरिया अंदर जा रहा होता है। इसलिए गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें इस बातनी नजासत से महफूज फरमा ले। तो पूरे बयान का खुलासा ये निकला कि एक नजासत हुक्मी होती है, एक नजासत हकीकी होती है। शरीयत ने दोनों को नजासत कहा। जो बंदा गुनाह करता है ना वो अपने जिस्म को उस नजासत जो बाथनी नजासत है उसके साथ आलूदा कर रहा होता है। कहीं आंख नापाक हुई, अगर गीबत की तो जबान मुंह नापाक हुआ, अगर किसी के माल को नाजायज इस्तेमाल किया तो हाथ नापाक हुए, किसी का दिल दुखाया तो दिल नापाक हुआ। तो इस तरह गुनाहों की वजह से हमारे जिस्म पर उनके असरात होते हैं। तौबा के जरिए और नेक आमाल अपनाने के जरिए से हम इस नजासत से पाक होकर जिंदगी गुजार सकते हैं। अब आप बताएं कि कोई बंदा अगर उस पर नजासत लगी हुई हो और वो बादशाह से मिलने के लिए सामने आ खड़ा हो तो बादशाह उसको पसंद करेगा? कभी भी नहीं पसंद करेगा। इसी तरह हम अपने नापाक मंसूबों को लेके, नापाक ख्वाहिशात को दिलों में लेके मुसल्लिफ़ अल्लाह के हुज़ूर खड़े हो जाते हैं तो फिर कबूलियत होगी या क्या होगा? इसीलिए इबादात में मजा नहीं आता, तिलावत में मजा नहीं आता, कुछ में भी दिल नहीं लगता। अल्लाह ताला हमें गुनाहों के असरात से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला नेकी की रोशनी और नेकी का नूर और नेकी की खुशबू ये सब नेमतें हमें नसीब फरमाएं।